اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیور علم سے آراستہ ہونے اور اپنے قرآن اور حدیث کے علوم سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ ایسے مدرسوں سے تعلق عطا فرما دیا جن میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور اس کو برتنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے. اس اعتبار سے ہماری تمام بچیاں اور معلمات بڑی قسمت والی ہیں، ان کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری زیور کے ساتھ باطنی زیور بھی عطا فرما دیا، اور جس کو یہ دونوں زیور مل جائیں اس کے حسن و جمال کا کیا ٹھکانا. وہ اندر سے بھی منور ہے اور باہر سے بھی منور ہے. اس اعتبار سے ہماری بچیاں بہت ہی قابل قدر ہیں اور ان کو اس پر خوش ہونا چاہیے اور اپنی سعادت سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو. زمین کے اندر جو کچھ ہے، زمین کے باہر جو کچھ ہے، اور آسمان جو کچھ لیے ہوئے ہے اپنے جلو میں، وہ سب اللہ کا ہے. جیسے کہ ابھی آیت میں پڑھا گیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے قابو سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی. آسمانوں کو بھی اسی نے بنایا ہے، زمینوں کو بھی اسی نے بچھایا ہے، اور آسمانوں میں جو کچھ اس نے رکھا ہے وہ اسی کی قدرت کا نتیجہ ہے، اور زمین میں جو کچھ اس نے لگایا ہے وہ بھی اسی کی قدرت کا نتیجہ ہے. اس لیے سب کے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے سب سے اہم بات کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. جس کو جتنا چاہے اس میں سے دے، جس کو جتنا چاہے اس میں سے دے. اسی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں کہ ہم لوگ کھاتے ہیں، غلہ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اور جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ کھاتے ہیں، جو پینے کی چیزیں ہیں وہ پیتے ہیں، لیکن ان سب میں جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں زمین کا بھرپور حصہ ہے اور آسمان کا بھی حصہ ہے. دونوں نے اپنے اپنے حصے کو لگا کر ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. تو اب اللہ کے لیے آسمان زمین میں اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، مطلب یہ ہوا کہ جتنا ہمارے مقدر میں ہے اتنا ہی ہم کھائیں گے. یعنی اللہ نے جتنا ہمارے لکھ دیا ہے، ہم کو اتنا کھانا ہے تو ہم اتنا ہی کھائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دانہ زیادہ کھائیں یا ایک دانہ کم کھائیں، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ قبضے میں سب ہے. پیداوار بھی اسی کا قبضے میں ہے، اور پیداوار کا گھروں میں پہنچ جانا اسی قبضے میں ہے، اور پھر کھانا اور کھا کر ہضم کرنا یہ بھی اسی قبضے میں ہے. تو اس لیے ہم کچھ ہیں نہیں، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب چیزوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے. خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کے آگے جھک جائیں جس نے یہ ساری چیزیں ہماری خدمت میں لگائی ہیں، اور اس سے حصہ ہم پا رہے ہیں. تو اگر یہ سمجھ کر ہم کھائیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اور اگر ہم اکڑ کر کھائیں گے کہ ہم نے اپنی طاقت پر اپنے بلبوتے پر اس کو نکالا ہے اور اس کو پیدا کیا ہے اور ہم کو اس میں تصرف کا حق حاصل ہے، تو یہ اللہ سے بغاوت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اگر کوئی شخص ہم کو پیسہ دے، جیسے مدرسے والے آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو راحت پہنچے، آرام پہنچے، اور آپ ہیں کہ مدرسے خلاف بولنے لگے اور مدرسے کا ذرا بھی احسان نہ مانے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، تو کیا مدرسے والے خوش ہو جائیں گے؟ हालांकि बेचारे मदरसे वाले खुद मोहताज हैं, कहीं से लाते हैं तो देते हैं, बीच के आदमी हैं ये लोग, ये बेचारे कहाँ से पैदा थोड़ी कर सकते हैं, लाते हैं इधर उधर इकट्ठा करके आपको राहत पहुंचाते हैं, तब भी मदरसे वाले नाराज़ होते हैं कि अगर ये कहा जाए मदरसा कुछ नहीं कर रहा है, तो जिसके कब्ज़े में सब कुछ है तो उसका आलम क्या होगा कि अल्लाह ही के कब्ज़े में, चाहे तो हमारा हाजमा भी ख़राब हो जाए और अगर वो चाहे तो हलफ में फंस जाए और अंदर पहुंच भी ना पाए। कितने वाक़ात ऐसे होते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ लाइब्रेरी में एक साहब मौसमी खा रहे थे और एक फांक उनकी हलक में फंस गई, वहीं इंतकाल हो गया। तब बताइए एक मौसमी नहीं जा पाई अंदर और उनका इंतकाल हो गया। इसलिए कि अल्लाह ताला का सारा चलाया हुआ निज़ाम है, तो हम सबको इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला बार बार याद दिलाता है। और अभी जो आपने आयतें पढ़ी तो उसमें पहली आयत यही थी कि आसमानों में और ज़मीनों में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है। जब अल्लाह का है तो जाहिर है कि हम भी अल्लाह के हैं, तो हमको भी उन चीज़ों का इस्तेमाल सही करना चाहिए। और फिर उन चीज़ों के इस्तेमाल पर जो फिक्र होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, सोच सही होनी चाहिए। और जब सोच सही होगी तो हमारा अंदाज सही होगा, जीने का तरीक़ा सही होगा। तो उसमें दूसरी आयत दूसरी तालिबा ने जो पढ़ी थी कि तबर्रुजल जाहिलिया वाला तबर्रुज न तबर्रुजल जाहिलिया किल उला, ए अल्लाह की बंदियों, तुमको जब अल्लाह ने ये सब नेमतें दी हैं तो तुमको जाहिलियत का अंदाज अख्तियार नहीं करना चाहिए। वो जाहिलियत जो तारीखी में डूबी हुई जाहिलियत थी, जहाँ ना हया थी ना शर्म थी और ना वहाँ किसी मजलूम की फरियाद सुनी जाती थी, न किसी यतीम के सर पर शफ़क़त का हाथ फेरा जाता था, न किसी बेवा को ख्याल में लाया जाता था। वो बिल्कुल जाहिलियत की ज़िंदगी थी, ऐसी ज़िंदगी कि हर शख्स परेशान था, सूदखोरी, जुआ, शराब और बदकारी पूरे माशरे में आम थी। तो अल्लाह ताला फरमाता है औरतों को ख़ास तौर खिताब करके कहता है कि जो वो अंदाज था जाहिलियत का, तारीखी के दौर का, वो अंदाज मत अख्तियार करो, बल्कि तुम्हारे लिए ज़रूरी ये है कि तुम नमाज कायम करो, ज़कात दो, और उसके अलावा दूसरी आयत में वक़्त नफ़ी हुई तो कन्ना अपने घरों में रहो और बाहर इस तरह न टहलो जिस तरह आवारा किस्म की औरतें टहला करती हैं, जिनके यहाँ न हया होती है, न शर्म होती है, न गैरत होती है। वो बेमुहाबा सड़कों पर टहलती रहती हैं, बाजारों में घूमती रहती हैं, और जिनको ना अपना ख्याल होता है ना अपने घर वालों का ख्याल होता है, और सिर्फ उनको अपनी गलत चीज़ों ही का ख्याल होता है। उससे मना किया गया और नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया, ज़कात देने का हुक्म दिया गया, और ख़ासतौर से औरतों को ज़कात देने के लिए कहा गया, क्योंकि नमाजें तो कुछ पढ़ लेती हैं लेकिन ज़कात देने के सिलसिले में औरतें बड़ी काहिल होती हैं। इसलिए ख़ासतौर से वातीन ज़कात कहा गया कि ज़कात की भी अदायगी तुम्हारे यहाँ होना चाहिए, और उसके अलावा फिर दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी नापाकियों को दूर फरमा दे, हमारी गंदगियों को दूर फरमा दे, हर एतबार से दिमाग की गंदगी शिर्क है, अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे, और इबादात की गंदगी रिया है उसको दूर फरमा दे, और हमारे नफ्स की ख्वाहिशात की गंदगी से हमको पाक कर दे, और शोहरत और जाह तलबी के मरज से हमको आज़ाद कर दे, और उसके अलावा जितनी बीमारियाँ हैं वो सब दूर कर दे। गोया के शायद से इशारा इस बात के मुताहिरनी तफसीरा के अधिमानी तफसीरा के अहले बैत को ख़ासतौर से मुखातब किया गया है कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअन्कुम अर्रिज़्ज़ा अहलल बैत वयुतहिरुकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ताला चाहता है ए घर वालियों कि अल्लाह ताला तुमसे नजासत को, गंदगी को, पलीदी को दूर कर दे और तुमको पाक साफ कर दे। तो अल्लाह ताला पाक साफ करना चाहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जब तुम हमारी तरफ आओगे हम आएंगे तुम्हारी तरफ। ये नहीं कि अल्लाह मियाँ चाहे सब कान पकड़ के ठीक कर ले, अल्लाह मियाँ के लिए कोई मुश्किल तो ही है। कुरान में फरमाया गया अगर अल्लाह चाहता तो ज़बरदस्त सबको एक रास्ते पर लगा लेता, लेकिन इम्तिहान कब होता, इम्तिहान कैसे ही उसको है कि दोनों ऑप्शन दे दिए जाएँ कि ये भी है ये भी है, अब आप जो चाहें अख्तियार करें। और अल्लाह ताला ने समझ दे दी, अकल दे दी, तो उस अकल का सही इस्तेमाल करें, अकल का इस्तेमाल करें सही, और दिमाग का सही इस्तेमाल करें, और सोच का सही इस्तेमाल करें, और फिक्र का सही इस्तेमाल करें, इसी वजह से याकिलून याकिलून खानजीन बहुत आया है। तो याकिलून खुद यानी सही इस्तेमाल अकल का, याकिलून का तनहा था जो है अकल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है अकल का सही इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब ही होता। अकल कहते ही इसको है जब उसका सही इस्तेमाल किया जाए, अगर अकल आगे बढ़ जाए तो मक्कारी है, अकल कम हो तो हिमाकत है, और सही अकल हो तो वही अकलमंदी है। तो ये अकिलों का मतलब यही होता है कि न उसमें मकर व फरेब हो और न हिमाकत व सफाहत हो, बल्कि वाकई अकल हो। इसीलिए अकिलों का तर्जुमा तना ये नहीं है कि वो अकल का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अकल का सही इस्तेमाल करते हैं, इफरात व तफरीत में मुबतला नहीं होते, तो फिर उनकी अकल जो है सही रहनुमाई करती है। लेकिन जिसकी अकल ही खराब बिगड़ी हुई हो तो कैसे समझ सकता है, या अकल आगे बढ़ी हुई हो या पीछे हटी हुई हो, यानी हर वक्त तरकीबी सोचता रहता है, तरतीब बनाता रहता है, बेवकूफ़ बनाने की मकर फरेब करता रहता है, और एक ये है बेचारे के अकल ही कम है, समझता ही नहीं है, दोनों बातें गलत। तो अकल का अगर इस्तेमाल सही किया जाए तो रहनुमाई अल्लाह ताला फरमाता है, तो जो इसी में हदीस में आता है, जो मेरे तरफ एक हाथ बढ़ता है मैं दो हाथ बढ़ता हूँ, एक बालिश बढ़ता है मैं दो बालिश बढ़ता हूँ, जो चल कर आता है मैं दौड़ कर आता हूँ, लेकिन पहले आपको करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो जाहिर है अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह हुवल गनी वअंतुम फकरा, अल्लाह गनी है तुम सब मोहताज हो, तो मोहताज आगे बढ़ेगा या गनी आगे बढ़ेगा, ये तो गैर फित्री बात है कि गनी बढ़े, लेकिन मोहताज बढ़े तो हाँ गनी फिर अपने गना के साथ, अपनी बड़ाई के साथ, अपनी अजमत के साथ, अपने जलाल के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ, अपने कर्म के साथ वो सामने आता है। जाहिर है कि फकीर और गनी में जो फर्क है वाजह है, फकीर फकीर है बेचारा कुछ नहीं लगता, गनी गनी है, तो अब अगर फकीर उसकी तरफ बढ़े तो गनी देने में कमी नहीं करता। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने खास अंदाज से कहा था, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहने में मंजिल ही नहीं। मामला ये कोताही हमारी है, हमारी तरफ से कोताही हो रही है, इस वजह से नहीं मिल रहा है, अल्लाह की तरफ से कोई कोताही नहीं। अल्लाह ताला ने तो पूरा इंतजाम कर रखा है, वहाँ जैसे कंप्यूटर है उंगली लगाई और खुल गया, अल्लाह मियाँ क्या उससे भी आगे है, इसलिए कि वहाँ तो कुन फयकून, अल्लाह के यहाँ तो बस कुन का बटन है कि लगा हुआ है, उस पर जहाँ उंगली किसी ने रखी, यानी आप जैसे विंडो होती है कि अगर अल्लाह से आप मांगें और उसकी तरफ बढ़ें तो आपने गोया के कुन का बटन दबा दिया, यह कुन तो खुद हो जाएगा। तो अल्लाह मियाँ ने सब फिट कर रखा है, यानी अल्लाह ताला के देर थोड़ी लगती है, अल्लाह ताला तो हर वक्त हाजिर और नाजिर और कादिर है, उसको लिए कोई मुश्किल नहीं है, हमा वक्त वो देख रहा है। वो इसीलिए अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाया, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहु बिकुल्ली शैइन अलीम, वो अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, और हर चीज़ का जानने वाला भी है। तो जो जाहिर होगा बातिन भी होगा, वो हर चीज़ का जानने वाला तो होगा, जो घर के बाहर भी है, घर के अंदर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, तो जाहिर है, वो न जानेगा तो कौन जानेगा। यहाँ हम लोग ही कहते हैं, कोई कोई शख्स होता है जो घर से बाहर भी रहता है अंदर भी रहता है, कहते हैं ये तो घर के आदमी है, ये अंदर भी जानते हैं बाहर भी जानते हैं। तो अल्लाह भी ने अपने बारे में कहा अंदर भी है बाहर भी है, हम सब जानते हैं, बस ये है कि हाँ पर्दा डाल देता है, घर वाला पर्दा डाल देता है। इसीलिए आपने देखा होगा घर के लोग अपने घर की बातों को बाहर नहीं कहते, और बाहर के लोग घर की बातों को पा जाए तो वह दौड़ाते हैं। तो अल्लाह मियाँ का हम तो घर के हैं, इसीलिए पर्दा डाल देते हैं, हम जानते हैं तुम क्या हो। अल्लाह ताला इसीलिए सत्तार भी है, सत्तार में पर्दा डालने वाला, इसी वजह तो हमारे अकाबिर हैं वो सब अल्लाह ताला की सत्तारी को देखते रहते हैं। हजरत अता इब्न अबी रबाह जो इतने बड़े आलिम हैं कि उनका सानी नहीं, जब मक्के मुकरमा में होते थे तो ऐलान होता था अमीरुल मोमिनीन की तरफ से कि अता के अलावा कोई फतवा न दे, इतने बड़े आदमी, और फरमाया करते थे मैं बंद ढक्कन हूँ, अगर ढक्कन खुल जाए तो बदबू से लोग करीब ना आए, भाग जाएं। जब वो ये कहते थे तो अंदाज़ा लगा लीजिए, तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने सब पर पर्दा डाल रखा है, और उस पर्दे के नतीजे में आदमी वाकिफ नहीं होता कि ये अंदर की बीमारियों में दिमाग में क्या क्या आता है, अगर उससे पर्दा हटा दिया जाए तो क्या हो, कौन सा आदमी है जिसके दिमाग में न जाने क्या क्या ना आता हो, तेजी से आता है निकल जाता है, ये अल्लाह का फजल है, बादलों के जहन में बैठ जाता है, बस वही मरद है। जैसे सड़क पर जाम लग जाए, ये तो जीटी रोड है, दिमाग हर तरह की सवारी चलती है इस पर, बस एक्सीडेंट ना हो और जाम ना लगे, वरना पीछे गाड़ियां लग जाएंगी सब, आए और जाए आए और जाए, तो आता जाता तो बहुत रहता है। तो अल्लाह ताला ने सत्तारी फरमाई कि घर का मामला है, भाई रख लो, मेरा बंदा है, मेरा बंदा है, घर का मामला बंद कर दो इसको। हाँ, अगर वो बदतमीजी करने लगे अपने घर के आदमी से तो मजबूरी है, निकालो उसको यहाँ से बाहर करो, तो निकाल दिया जाता है फिर। इसलिए जो अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेता है, और इसीलिए दूसरों के ऐप पर भी पर्दा डालने का हुक्म है कि तुम भी मत बयान क्यों। इसीलिए औरत को मर्द का पर्दा बनाया, मर्द को औरत का पर्दा बनाया, औरतों को कुरान जी में कहा गया हुन लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लहुन, औरत जो है मर्द का पर्दा है और मर्द औरत का पर्दा है, इसलिए ये इसका लिबास है वो इसका लिबास है। और लिबास का क्या काम है कि अंदर जो बीमारी है जो दाग धब्बे हैं सब छुपा देता है। तो बीवी अपने शोहर के लिए लिबास है और शोहर बीवी के लिए लिबास है, वो उसके अयूब को ढक देता है, ये उसके अयूब को ढक देती है। और लिबास का काम ये भी है गर्मी और सर्दी से बचाता है, और ये भी है कि खूबसूरत बनाता है। तो औरत मर्द के लिए खूबसूरती का जरिया है, और मर्द औरत के लिए खूबसूरती का जरिया है। इसी वजह से दोनों को हुक्म है कि तुम उसकी बातें बुरी न बाहर बयान करो, और औरत शोहर की बातें बाहर न बयान करे, आपस में मिलकर मामले को दुरुस्त कर लो, ठीक कर लो। कुछ खटपट हो सकती है, लेकिन ये तो होगी, जहाँ बर्तन होंगे मामलात होंगे वहाँ ये तो होगा, आवाज़ आएगी, लेकिन वो आवाज़ बाहर तक न जाए। तो इन बातों का ख्याल रखा जाए। तो इसीलिए फरमाया गया कि जाहिलियत की जो अदाएँ हैं, जाहिलियत का जो तर्ज हयात है, जाहिलियत में ज़िंदगी गुजारने के जो आदाब थे उनको अक्सर छोड़ दो, और जो इस्लाम ने दिए हैं सही अंदाज उसको अख्तियार कर लिया जाए। ये अगर हमारी बच्चियाँ कर लें तो गैर मामूली वो बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने औरतों को बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, और उनको अंदर रख कर बाहर के भी काम अंजाम देने की गैर मामूली सलाहियत अता फरमाई है। अगर औरतें अपनी सलाहियतों को पहचान लें और अंदर अपने को जान लें तो वो गैर मामूली किरदार अदा कर सकती हैं, अपने शोहरों को भी ठीक कर सकती हैं, अपने वालदैन को भी दुरुस्त कर सकती हैं, अपने बच्चों की तरबियत भी गैर मामूली कर सकती हैं, और अपने भाई बंदों को भी ठीक कर सकती हैं, और ख्वातीन के तबके को भी दुरुस्त कर सकती हैं। ये सारी जिम्मेदारियाँ औरतों की हैं। अल्लाह ताला ने जिन बच्चियों को उलूम इस्लामिया दीनिया से जोड़ दिया है उनको उस पर शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, ताकि ये नेमतें मजीद आगे बढ़ें।